آگے سبق دیکھیے بھائی. وَإِذَا كَانَ لِلِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزْ. گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیوی اور اصول و فروع کے علاوہ اور جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ بھی بعض صورتوں میں انسان پر واجب ہوگا. تو اس میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ وہ قریبی محرم رشتہ دار فقیر ہو, اور پھر وہ نابالغ ہو یا مؤنث ہو, یا ایسا بالغ مرد ہے جو اپاہج ہے یا اندھا ہے, تو یہ سب بھی محتاج ہیں, تو حاجت کی وجہ سے ان کا نفقہ قریبی محرم رشتہ دار پر واجب ہوگا جبکہ وہ قریبی محرم رشتہ دار مالدار ہو بھائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, کہ وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے, یعنی نفقہ واجب ہے بھائی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں وارث کے ساتھ ذی رحم محرم کی صفت بھی موجود ہے, تو لہذا وہ یہاں معتبر ہوگی. تو جو بھی قریبی محرم رشتہ دار ہو اور وہ محتاج ہو تو اس کا نفقہ اس مالدار آدمی پر آئے گا بھائی. البتہ اگر کوئی قریبی محرم رشتہ دار بالغ ہے اور وہ کمانے پر قادر ہے تو کمانے پر قدرت ہی مالداری کے قائم مقام ہے, لہذا اس کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہوگا, اس کو خود کما کر اپنے نفقے کا انتظام کرنا ہوگا. جبکہ والدین جو ہیں وہ چاہے کمانے پر قادر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کا نفقہ, جب وہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہوگا. وجہ یہ کیونکہ والدین جو ہے اگر ان کا نفقہ اولاد پر واجب نہ کیا جائے تو پھر ان کو محنت اور مشقت کرنا پڑے گی پیسے کمانے کے لیے, اور حالانکہ ہمیں تو والدین کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے, تو لہذا کمائی پر قدرت کے باوجود ان کا نفقہ اولاد کے مال میں سے واجب ہوگا جب یہ والدین فقیر ہوں بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ جو ہے وہ میراث کے بقدر واجب ہوگا, یعنی جس شخص کو جتنا میراث میں حصہ مل رہا ہے اسی کے بقدر اس پر نفقہ بھی واجب ہوگا, اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر وارث کے لفظ پر تصریح کی گئی ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور وارث یہ تو صفت کا صیغہ ہے, یہ مشتق ہے, اور مشتق پر جب بھی کوئی حکم لگایا جائے اس کی علت مشتق منہ ہوتا ہے. معلوم ہوا یہاں جو وارث پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کی علت وراثت ہے, تو وراثت کے بقدر ہی اس پر نفقہ بھی واجب ہوگا. اور نیز اس لیے کیونکہ فقہ کا ضابطہ ہے الغرم بالغنمی, کہ زمان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں ہے بھائی, زمان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں ہے. اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر بالغ اولاد جو ہے وہ مؤنث ہے یا وہ اپاہج ہے اور فقیر ہے تو اس صورت میں ان کا نفقہ جو ہے وہ بھی والد پر لازم ہوگا ظاہر روایت کے مطابق. البتہ امام صاحب سے ایک اور روایت نقل کی ہے امام خصاف نے اور امام حسن ابن زیاد رحمہم اللہ نے, کہ اگر بالغ بیٹی فقیر ہے یا بالغ بیٹا اپاہج ہے تو ان کا نفقہ باپ پر نہیں آئے گا بلکہ ماں باپ دونوں پر آئے گا اور میراث کے بقدر آئے گا. اور ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور صرف اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو مال میں سے میراث میں سے تیسرا حصہ ملتا ہے اور باپ کو دو حصے ملتے ہیں, یعنی ماں کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے, ماں کا حصہ ایک تہائی اور باپ کا حصہ دو تہائی, تو لہذا نفقے کے اندر بھی اسی طرح ان پر خرچہ آئے گا. اگر ان کی بالغ بیٹی یا بالغ اپاہج بیٹا ہے اور وہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ بھی ماں باپ پر تین حصے کر کے واجب ہوگا بھائی. باپ پر دو حصے آئیں گے اور ایک حصہ ماں پر واجب ہوگا. لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ فتویٰ جو ہے ظاہر روایت پر ہے. ظاہر روایت یہ ہے کہ یہ اولاد کا خرچہ باپ پر ہی واجب ہوگا. یہ جو بالغ اولاد ہے یہ بھی جب محتاج ہے تو یہ نابالغ اولاد کے درجے میں ہوئی, اور نابالغ اولاد کا خرچہ تو صرف باپ پر لازم ہوتا تھا, تو اس بالغ اولاد کا خرچہ بھی حاجت کی صورت میں صرف باپ پر لازم ہوگا بھائی. اور صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ وارث پر ہوگا, اس میں اہلیت ارث معتبر ہے, وارث ہونے کی صلاحیت معتبر ہے, احراز ارث معتبر نہیں. یعنی حقیقت میں وارث بنے گا اور اس کو مال ملے گا یہ معتبر نہیں ہے. وجہ یہ کہ ایک تو حقیقت کا بھی پتہ چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ وارث تو وہی بنتا ہے جو موت کے وقت زندہ ہو, تو معلوم نہیں یہ اس کی موت کے وقت زندہ بھی ہوگا یا زندہ نہیں ہوگا. اور نیز ایک اور مثال سے بھی صاحب ہدایہ نے وضاحت کی کہ ایک شخص جو ہے وہ تنگ دست ہے, اپاہج ہے, اور اس کا مامو بھی زندہ ہے اور چچا کا بیٹا بھی زندہ ہے, تو یہ مامو اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے, لہذا اس پر اس کا نفقہ واجب ہوگا. جبکہ چچا کا بیٹا وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں, کیونکہ چچا کی بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز ہے, تو وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں. لیکن اگر اس آدمی کا انتقال ہوا تو اس کی ساری جائیداد جو ہے اس کا مالک چچا کا بیٹا بنے گا, اور مامو کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے, اور جن رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہو ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں, اور ان کو مال وراثت تب ملتا ہے جب عصبات میں سے کوئی نہ ہو. مال باقی بچ جائے اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو حصہ ملتا ہے, اور یہاں تو چچا کا بیٹا عصبہ موجود ہے لہذا سارا مال یہ چچا کا بیٹا لے جائے گا. تو دیکھو میراث تو ساری چچا کے بیٹے کو مل رہی ہے لیکن نفقہ مامو پر آ رہا ہے, وجہ یہ کہ مامو کے اندر وارث بننے کی صلاحیت ہے بھائی, کیونکہ وہ کس میں سے ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے بھائی, اور ذوی الارحام بھی وارث بنتے ہیں جب عصبات نہ ہوں اور مال بچ جائے. اور صاحب ہدایہ نے پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ تب واجب ہوگا جب دین بھی ایک ہی ہو بھائی, جب دونوں کا دین ایک ہو. اگر دین مختلف ہے تو پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا, اس لیے کیونکہ اس نفقے کے اندر اہلیت میراث معتبر ہے بھائی, اور جب دین مختلف ہے پھر تو ایک دوسرے کے وارث ہی نہیں بن سکتے, تو لہذا وہاں نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا بھائی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص فقیر ہے تو اس پر بھی دوسرے قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ واجب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ خود محتاج ہے تو دوسرے کا نفقہ اس پر واجب نہیں کیا جا سکتا. البتہ بیوی اور اولاد کا نفقہ ہر حال میں انسان پر واجب ہوگا چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو. وجہ یہ کہ بیوی کے ساتھ اس نے خود نکاح کیا ہے, تو جب اس نے خود نکاح کیا ہے تو اپنے اوپر خود ہی نفقے کو لازم کیا ہے, اور جس چیز کو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لے اس میں تنگ دستی کو نہیں دیکھا جاتا. تو بیوی کا نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا اور نابالغ اولاد کا نفقہ بھی اس آدمی پر واجب ہوگا چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مالداری میں کس چیز کو دیکھا جائے گا, کس چیز سے پتا چلے گا کہ ایک شخص مالدار ہے اس پر نفقہ واجب کیا جا سکتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصاب کو دیکھا جائے گا, یعنی نصاب زکات کو. اگر اس شخص کے پاس نصاب زکات کے بقدر مال موجود ہے, یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر مال نامی موجود ہے, مال نامی بڑھنے والا مال یعنی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت, ان میں سے کوئی چیز موجود ہے اور ان سب کی قیمت ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکات واجب ہوتی ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی مالداری کے اندر یہ نصاب زکات ہی معتبر ہے, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, حقوق العباد کے اندر نصاب اور مالداری کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہاں پر قدرت کو دیکھا جاتا ہے. ایک شخص پر دوسرے کا حق واجب ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا, اس کے اندر اس کی مالداری کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کی قدرت کو دیکھا جائے گا, جب وہ قادر ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا بھائی. और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि फतवा पहले कौल पर है कि यहां पर मालदारी में निसाब को देखा जाएगा। लेकिन इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे कि वजूब जकात का निसाब मोतबर है, लेकिन यहां पर वजूब जकात का निसाब नहीं मोतबर बल्कि हिरमान जकात का निसाब मोतबर है। भाई मैंने बताया कि वजूब जकात का निसाब भी 52.5 तोले चांदी है और हिरमान जकात का निसाब भी 52.5 तोले चांदी है। जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बकदर माल हो तो ये हिरमान जकात का निसाब पूरा है, लिहाजा ये शख्स जकात से महरूम होगा, यानी ये जकात का मुस्तहिक नहीं है, इसको जकात नहीं दी जा सकती। लेकिन फर्क यह है दोनों के अंदर, मिकदार तो दोनों में 52.5 तोले चांदी है, लेकिन फर्क यह है कि वजूब जकात में सिर्फ माले नामी को देखा जाएगा, यानी वो माल जो बढ़ने वाला है, जो बढ़ सकता है, और वो सोना चांदी करंसी और माले तिजारत है। जबकि हिरमान जकात के निसाब में ये माले नामी को भी शामिल करेंगे और इसके अलावा अगर कोई जायद माल है एक इंसान के पास और वो उसकी जरूरत असलिया से, उसकी हाजत असलिया से जायद है तो उसकी भी कीमत मिलाकर साथ शामिल करेंगे। मसलन एक शख्स है, उसके पास 52.5 तोले चांदी से कम मिकदार के अंदर करंसी मौजूद है, उसके पास 52.5 तोले चांदी से कम करंसी मौजूद है, लेकिन इसके पास हाजत असलिया से जायद कुछ चीजें मौजूद हैं, मसलन घर में कुछ बर्तन मौजूद हैं और वो बर्तन भी ऐसे हैं कि वो इस शख्स की हाजत असलिया से जायद हैं, तो फिर इन बर्तनों की कीमत भी साथ मिलाई जाएगी और फिर जो है हिरमान जकात का निसाब पूरा हो जाएगा, तो ये शख्स मुस्तहिक जकात नहीं होगा, इसे जकात नहीं दी जा सकती। और इसी तरह अगर कुछ चीजें मसलन इंसान ने आसाइश के लिए रखी हुई हैं, उसकी हाजत असलिया से जायद हैं, मसलन हाजत तो एक साइकिल की है, इसने दो साइकिलें रखी हुई हैं, तो दूसरी साइकिल भी क्या हुई, हाजत असलिया से जायद हुई, तो इन जायद चीजों की या इस आसाइश के लिए रखी हुई चीजों की भी कीमत लगाई जाएगी। अब आइए आज के सबक पर। व इदा कान लिल इब्न अल गाइब मालुन कुज़िया फीही बिनफ़क़ति अबवैही वक़द बय्यना अल वजह फीह। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि काजी जो है गायब शख्स के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, भाई कजा अलल गाइब जायज नहीं है, तो गायब शख्स के खिलाफ किसी के नफके का भी फैसला नहीं किया जा सकता सिवाय उसूल और फुरू और बीवी के। वजह यह कि उसूल और फुरू और ये जो बीवी है इनका नफका कजाए काजी के बगैर ही उस शख्स के माल में वाजिब है, तो जब काजी इनके नफके का हुक्म दे रहा है तो वो कोई कजा अलल गाइब नहीं कर रहा, क्योंकि इनका नफका तो पहले से ही उसके माल में वाजिब था, काजी सिर्फ उनकी मदद कर रहा है, तो लिहाजा ये कजा अलल गाइब नहीं है। तो मालूम हुआ काजी वो किसी गायब शख्स की बीवी और उसकी नाबालिग औलाद और उसके वालिदैन, गायब शख्स के माल में भी इनके नफके का फैसला कर सकता है। तो यही बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं वह इदा कान लिल इब्न अल गाइब मालुन, और जब गायब बेटे का कोई माल हो, कुज़िया फीही बिनफ़क़ति अबवैही, तो उसमें फैसला किया जाएगा उसके वालिदैन के नफके का, वक़द बय्यना अल वजह फीही, और तहकीक इसके अंदर हमने वजह बयान कर दी थी कि इनका नफका कोई कज़ाए काजी से वाजिब नहीं हुआ, यह पहले से ही वाजिब था, काजी सिर्फ इनकी मदद कर रहा है भाई, तो यह कज़ा अलल गाइब नहीं है भाई। वह इदा बा अबू मताहू फी नफ़क़तिही जाज़ा। भाई अब सूरत मसला यह कि एक शख्स गायब है और उसके मां बाप जो हैं वो फकीर हैं और मोहताज हैं, तो अब क्या बाप इस गायब बेटे के माल को नफके के अंदर बेच सकता है या नहीं बेच सकता, तो अब उसको बयान फरमा रहे हैं। भाई याद रखो किसी शख्स का माल जो है वो दो किस्म का हो सकता है, कुछ माल मनकूली होता है और कुछ माल गैर मनकूली। गैर मनकूली वो है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल न किया जा सके, और मनकूली वो है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। गैर मनकूली मसलन एक आदमी का घर है, ये घर गैर मनकूली है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह दुकान जो है, दुकान को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते, तो दुकान भी गैर मनकूली है। इसी तरह कारखाना है, इसी तरह काबिले काश्त जमीन है, इसी तरह बाग है, ये सब गैर मनकूला जायदादें हैं भाई। और इसके अलावा और जो सामान है वो सब मनकूली चीजें हैं। जैसे देखो गाड़ी है, गाड़ी को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। घर का सामान है, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। कारखाने का सामान है, बड़ी से बड़ी मशीनरी जो है उसको भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये सब मनकूली चीजें हैं भाई। तो मालूम हुआ चीजें कितनी किस्म पर हो गई, दो, कुछ मनकूली हैं और कुछ गैर मनकूली। अब मसला यह है कि बेटा गायब है और उसने पीछे कुछ माल छोड़ा है, और इसके मां बाप फकीर हैं, मोहताज हैं, और बेटे का जो माल है वो मां बाप के नफके की जिंस में से नहीं है। मसलन मां बाप का नफका जो है वो तो या तो दिरहम होंगे या दीनार होंगे या गंदुम होगी भाई, लेकिन बेटा जो पीछे माल छोड़कर गया है वो दिरहम और दीनार भी नहीं है और गंदुम वगैरह भी नहीं है। अब मां बाप को हाजत है, जरूरत है नफके की, तो क्या ये बेटे के सामान को अपने नफके में बेच सकते हैं? तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर वो मनकूली सामान है तो उसको बाप जो है बेच सकता है अपने नफके में। मनकूली सामान को बाप अपने नफके में बेच सकता है। अलबत्ता अगर वो गैर मनकूली सामान है, मसलन जमीन वगैरह है, जायदाद है, काबिले काश जमीन है, कारखाना है या बाग है, इनको बाप नहीं बेच सकता। तो हासिल कलाम ये कि फुकहा फरमाते हैं कि गायब शख्स के माल को भी वालिदैन के नफके में बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें चार शर्तें हैं भाई। पहली शर्त, बेचने वाला उस गायब आदमी का बाप हो। दूसरी शर्त कि वो जो गायब है वो इसका बेटा है। तीसरी शर्त भाई कि ये जो सामान है ये मनकूली होना चाहिए, गैर मनकूली नहीं। और चौथी शर्त यह है कि यह सामान वो नफके के अंदर बेच रहा है, नफके के लिए भाई, किसी और देन वगैरह में नहीं बेच रहा। मसलन बाप ने किसी का कर्जा अदा करना है, तो अब बाप बेटे के माल को बेचकर कर्जा अदा करना चाहता है? नहीं भाई, आपको नफके के अंदर तो गायब बेटे का मनकूली सामान बेचने की इजाजत है, लेकिन किसी और देन वगैरह में आपको बेटे का सामान बेचने की इजाजत नहीं है। तो कितनी शर्तें हो गई? चार। पहली शर्त कि यह शख्स गायब आदमी का बाप हो, और दूसरी शर्त कि वह गायब आदमी इसका बेटा हो, और तीसरी शर्त कि यह सामान मनकूली हो भाई, और चौथी शर्त यह है कि इसको अपने नफके में बाप बेच रहा हो, किसी और देन वगैरह में न बेच रहा हो। तो कहते हैं वह ईदा बा अबूहू मताहू फी नफकती ही जाजा, और जब इस गायब शख्स के बाप ने बेचा इसके सामान को, फी नफकती ही अपने नफके में, जाजा तो यह जायज है। इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला इमाम साहिब के नजदीक, वहां इस्तेहसान, और यह इस्तेहसान है। इमाम साहब फरमाते हैं कि बाप अपने गायब बेटे के मनकूली सामान को अपने नफके में बेच सकता है, और यह इस्तेहसान है भाई। कियास तो यह तकाजा करता है कि बाप को इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। वजह यह कि यह बेटा बालिग हो चुका है, बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो इस पर और इसके माल पर बाप की विलायत खत्म हो चुकी। जब बाप को विलायत ही नहीं है तो कैसे बेच सकता है? तो कियास तो यह तकाजा करता है कि बाप को बेटे का सामान बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन इमाम साहब फरमाते हैं बाप अपने नफके में गायब बेटे का मनकूली सामान बेच सकता है भाई। तो कहते हैं वहाद इस्तेहसानन, और यह इस्तेहसान है। व इन बाअल अकार लम यजुज, अकार कहते हैं गैर मनकूली जायदाद जिसको एक जगह से दूसरी जगह नकल न किया जा सके। तो कहते हैं वह इन बाअल अकारा, और अगर बाप ने गैर मनकूली जायदाद बेची, लम यजूज, तो यह जायज नहीं है। وَفِي قَوْلِهِمَا اور صاحبین کے قول میں لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ کہ اس سب کے اندر یہ جائز نہیں ہے. امام صاحب تو فرماتے ہیں منقولی میں یہ بیع جائز ہے اور غیر منقولی میں یہ بیع جائز نہیں, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس سب کے اندر ہی یہ بیع جائز نہیں, چاہے منقولی ہو چاہے غیر منقولی ہو. یہ معنی ہے وفی قولی ہما اور صاحبین کے قول میں لا یجوز فی ذالک کلی ہی کہ اس سب کے اندر یہ جائز نہیں ہے. وہو القیاس اور یہی قیاس بھی ہے, لئنہ لا ولایت لہ اس لیے کیونکہ باپ کو ولایت حاصل نہیں ہے, لانقطاعها بالبلوغ اس لیے کیونکہ ولایت منقطع ہو چکی ہے بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے, ولہذا لا یملک حال حضرته اور اسی لیے باپ بیچنے کا مالک نہیں ہے بیٹے کی موجودگی میں. ولایت منقطع ہو چکی ہے بیٹے پر اور بیٹے کے مال پر, لہذا اسی لیے جب بیٹا موجود ہو پھر تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کا مال بیچنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولہذا لا یملک حال حضرته اور اسی لیے باپ بیٹے کے مال کو بیچنے کا مالک نہیں ہے, حال حضرته بیٹے کی موجودگی میں, ولا یملک البیع فی دین لہ سوا نفقتی اور اسی لیے باپ مالک نہیں ہے بیچنے کا, فی دین لہ اپنے دین میں, سوا نفقتی نفقے کے علاوہ. صاحبین کی دلیل چل رہی ہے, صاحبین فرماتے ہیں بیٹے پر اور بیٹے کے مال پر سے باپ کی ولایت ختم ہو چکی ہے, لہذا اسی لیے بیٹا اگر موجود ہو تو باپ کو اس کا سامان اپنے نفقے میں بیچنے کی اجازت نہیں, اور نیز باپ اگر اپنے نفقے کے علاوہ کسی اور دین کے اندر اپنے بیٹے کے سامان کو بیچنا چاہے اور بیٹا غائب ہے تو باپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی دیکھیے نا, انہوں نے پیچھے بتایا نا کہ بیٹا غائب ہو تو اپنے نفقے کے اندر باپ اس کے منقولی سامان کو بیچ سکتا ہے, اسی سے صاحبین استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ اپنے غائب بیٹے کے منقولی سامان کو صرف اپنے نفقے میں بیچ سکتا ہے, نفقے کے علاوہ کسی اور دین میں بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ باپ کو ولایت نہیں ہے بھائی. یہ مانا ہے ولا یملک البیع فی دین لہ سوا نفقتی اور باپ اس سامان کو بیچنے کا مالک نہیں ہے نفقے کے علاوہ اپنے کسی اور دین میں, وکذا لا تملک الام فی نفقتی اور اسی طرح اس کی مالک ماں بھی نہیں ہے فی نفقتی نفقہ میں. بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ چار شرطیں ہیں پھر ایک شخص کسی غائب کے سامان کو بیچ سکتا ہے, پہلی شرط کیا کہ بیچنے والا باپ ہو, دوسری شرط کہ وہ غائب جو ہے اس کا بیٹا ہو, تیسری شرط کہ وہ سامان منقولی ہو, اور چوتھی شرط یہ کہ وہ اپنے نفقے میں بیچے. معلوم ہوا ماں بھی اپنے نفقے کے اندر غائب بیٹے کے سامان کو نہیں بیچ سکتی. تو یہی بیان فرما رہے ہیں وَقَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَتِ اور اسی طرح ماں بھی اس بیچنے کی مالک نہیں ہے, فِي النَّفَقَتِ اپنے نفقے میں. یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے. کیا دلیل ہوئی صاحبین کی؟ صاحبین فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ باپ کی ولایت ختم ہو چکی ہے, چنانچہ اگر بیٹا موجود ہو تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ موجود بیٹے کا مال نہیں بیچ سکتا, اور نیز امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ باپ صرف اپنے نفقے میں بیچ سکتا ہے کسی اور دین کے اندر نہیں بیچ سکتا, اور نیز اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ماں کو بھی اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. تو یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہ باپ کو اپنے نفقے میں بھی غائب بیٹے کا مال بیچنے کی اجازت نہیں بھائی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اب امام صاحب کی دلیل آ گئی. میں نے ذکر کیا تھا بھائی, میں نے ذکر کیا تھا والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آ جائے وہاں دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب مسئلے کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ اتنی گہرائی تک پہنچنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوتا. تو جب صاحبین اتنی گہرائی تک نہیں پہنچتے تو پھر اس کا نتیجہ اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اب امام صاحب کی دلیل آ گئی ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان للابی ولایت الحفظ فی مال الغائب الا ترى ان للوصی ذلک فالاب اولى لبفور شفقته. امام صاحب فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے اس کو اپنے غائب بیٹے کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوتی ہے. باپ کو اپنے غائب بیٹے کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوتی ہے کہ باپ اس کی حفاظت کرتا ہے بھائی, اس کو ولایت ہے بھائی, और हिफाजत के अंदर कभी चीज को बेचना भी पड़ता है, जमीन और जायदाद और घर वगैरह यानी गैर मनकूली जायदाद, उसको तो हिफाजत की हाजत नहीं, वो खुद ही महफूज है। इस जमीन को कोई उठाकर यहां से नहीं ले जा सकता, तो जमीन और जायदाद वगैरह तो खुद ही महफूज है, लेकिन बाकी चीजें उनमें तो खराब होने का इम्कान होता है, उनके जाया हो जाने का खतरा होता है, तो कभी कभार बतौर हिफाजत के उनको बेचना जरूरी हो जाता है। अब मसलन बेटा गायब है और उसका कुछ सामान पड़ा हुआ है, अरसा गुजर गया, अब खतरा हो रहा है कि यह सामान तो जाया हो जाएगा, तो बाप को इजाजत है कि वो इस सामान को बेच दे और फिर वो जो रकम हासिल होगी उसको बेटे के लिए संभाल कर रख ले भाई। चुनाचे वसी को भी इसकी इजाजत होती है, वसी यून स्वाद के साथ है। वसी वो शख्स है जिसको मरने वाला अपनी चीजों का निगरान बना दे। एक आदमी मरने वाला है और उसके बच्चे छोटे हैं, तो वो एक आदमी को निगरान बनाता है अपने माल का कि ये माल तुमने अपनी निगरानी में रखना है, मेरी चीजों की आपने हिफाजत करनी है और इसमें से मेरी औलाद पर खर्च करते रहना और जब वो बालिग हो जाए तो माल उनके हवाले कर देना। तो ये जो वसी है इसको भी इजाजत होती है, ये हिफाजत की नीयत से उस सामान को बेच सकता है। बल्कि अगर वारिसों के अंदर माल तकसीम हो रहा है लेकिन एक वारिस गायब है, कहीं गया हुआ है, उसका पता ही नहीं कि कहां गया है और कब आएगा, तो उसका हिस्सा वसी ने अलग कर लिया। अब उसके हिस्से में जो चीजें आई उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर उनको नहीं बेचा जाएगा फौरन तो वो जाया हो जाएंगी, तो वसी को बतौर हिफाजत के गायब बालिग वारिस के सामान को भी बेचने की इजाजत है। वसी को हिफाजत के लिए ऐसे गायब वारिस जो बालिग है उसके सामान को बेचने की भी इजाजत है। जब वसी के लिए बतौर हिफाजत के ऐसे वारिस के सामान को बेचना जायज है जो बालिग है और गायब है, तो बाप के लिए तो बतरीके औला जायज होगा, क्योंकि बाप की तो शफकत बहुत ज्यादा होती है अपनी औलाद पर। तो मालूम हुआ बाप को अपने गायब बेटे का सामान बतौर हिफाजत के बेचना जायज है, और जब बाप के लिए सामान बेचना जायज है तो उसमें से अपना नफका लेना भी जायज है भाई। दलील भी समझ में आई कि नहीं? मालूम हुआ बाप के लिए बेटे का माल बेचना जायज है, बाप के लिए बेटे का माल बतौर हिफाजत के बेचना जायज है। जब बाप के लिए बेटे के माल का बेचना जायज हुआ तो अब वो इस बेटे के माल को अपने नफके में भी बेच सकता है, क्योंकि बेटे के माल को बेचना बाप के लिए जायज है भाई। वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्ना लिल अबी विलायत अल हिफ्ज़ी फी मालिल गाइबी, के बाप जो है उसको गायब बेटे के माल में हिफाजत की विलायत होती है। अला तरा अन्ना लिल वसी ज़ालिका, क्या आप देखते नहीं कि वसी के लिए भी ये जायज है कि वो मनकूली सामान को हिफाजत के लिए बेच दे, अगरचे वो वारिस जो गायब है वो बालिग ही क्यों ना हो। तो कहते हैं अला तरा अन्न लिल वसी ये जालिका, क्या आप देखते नहीं कि वसी के लिए भी ये जायज है। फल अबू औला, तो बाप जो है उसके लिए बतरीके औला ये जायज होगा। लिवुफूरी शफकती ही, वुफूर कहते हैं कसरत को, लिवुफूरी शफकती ही बाप की शफकत कसीर होने की वजह से। व बैउल मनकूली मिन बाबिल हिफ्जी, और मनकूली चीज को बेचना यह हिफाजत के बाब से है। मनकूली चीजों को हिफाजत की नीयत से बेचा जाता है। वला कदालिकल आकारु, और आकार यानी ये गैर मनकूली जायदाद इस तरह नहीं है। लिअन्नहा मुहस्सनतुम बिनफ्सिहा, हस्सन युहस्सिनु तहसीन बै स्वाद के साथ है, इसके माने हिफाजत करना। लिअन्नहा मुहस्सनतुम बिनफ्सिहा, इसलिए क्योंकि गैर मनकूली जायदाद खुद ही महफूज है, खुद ही महफूज है, उसको कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। वह भी खिलाफ गैरिल अबी मिनल अकारिबी, और बखिलाफ बाप के अलावा और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए यह माल बेचना अपने नफके में जायज नहीं। तो कहते हैं वह भी खिलाफ गैरिल अबी मिनल अकारिबी, और बखिलाफ बाप के अलावा जो और रिश्तेदार हैं यानी उनको बेचने की इजाजत नहीं है। लिअन्नहु ला विलायत लहुम असलन फी तसर्रुफी हालत सिगरी, इसलिए क्योंकि इनको सिगर की हालत में सिरे से तसर्रुफ की विलायत ही नहीं होती। बाप को तो सगीर के माल में तसर्रुफ की विलायत हासिल है, बाप सगीर के माल को बेच सकता है या उसके लिए कोई चीज उसके माल से खरीद सकता है, लेकिन बाप के अलावा और करीबी महरम रिश्तेदारों को तो इसकी विलायत हासिल नहीं है, तो लिहाजा उनके लिए जायज नहीं कि वह नफके के अंदर इस गायब के सामान को बेचें। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु ला विलायत लहुम असलन, इसलिए क्योंकि और रिश्तेदार जो हैं उनके लिए सिरे से कोई विलायत है ही नहीं। फिर तसर्रुफी हालत सिगरी, सिगर की हालत में तसर्रुफ के अंदर, सिगर की हालत में तसर्रुफ में यानी माल के अंदर तसर्रुफ में उनको कोई विलायत हासिल नहीं है। वला फिल हिफ्ज बादल की बरी, और ना ही हिफाजत के अंदर उनको विलायत हासिल है बादल की बरी बड़े होने के बाद यानी बालिग होने के बाद। बाप को सिगर में भी विलायत तसर्रुफ हासिल है और बड़े होने के बाद विलायत हिफ्ज हासिल है, जबकि और रिश्तेदार जो हैं उनको सिगर की हालत में विलायत तसर्रुफ भी नहीं सगीर के माल में, और बड़े होने के बाद विलायत हिफ्ज भी नहीं है। भाई तो ये माना है वला फिल हिफ्ज बादल की बरी, और बालिग होने के बाद हिफाजत में भी उनको कोई विलायत हासिल नहीं। वह इदा जाज बैउल अबी, और जब बाप का बेचना जायज हुआ कि वो बेटे के माल को बेच सकता है, वह समनु मिन जिनसी हकी ही, और वो जो समन हासिल हुए हैं वो इस बाप के हक की जिन्स में से हैं। बाप ने चीज बेची तो जो समन हासिल हुए ये बाप के हक की जिन्स में से है, इसमें से बाप का नफका अदा किया जा सकता है। तो कहते हैं बस समन उमिन जिन्स हक ही, और ये जो समन है ये बाप के हक की जिन्स में से हैं। वह हुआ नफका, और बाप का हक क्या है, वो नफका है, तो ये नफके की जिन्स में से हैं। फलहुल इस्तीफा उमिन हु, तो बाप के लिए इसमें से वसूल करना जायज है, अपनी जरूरत के बकदर वसूल कर सकता है, जरूरत से जायद वसूल नहीं कर सकता। कमा लौबा अल आकार अवल मन कूला अल सगीर इजाजा, जैसे कि अगर बाप ने बेचा गैर मनकूली जायदाद को, वल मनकूला और मनकूली सामान को, अल सगीर सगीर पर जाजा, तो यह जायज है। भाई देखिए बाप को सगीर पर भी विलायत है और उसके माल पर भी विलायत है, बाप उसके मनकूली सामान को भी हिफाजत की नीयत से बेच सकता है या फायदे के तौर पर बेच सकता है अगर नफा हो रहा है, और इसी तरह बाप के लिए नाबालिग की जमीन को बेचना भी जायज है जबकि उसमें नुकसान न हो। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कमा लौ बा अल हकार अवल मनकूला अल सगीर इजाजा, जैसे कि बाप जो है सगीर पर उसकी जायदाद को या उसके मनकूली सामान को बेचे तो यह जायज है। लिकमाल विलायत, विलायत के कामिल होने की वजह से कि बाप को कामिल विलायत हासिल है, तो बाप नाबालिग की जायदाद को भी बेच सकता है और मनकूली सामान को भी बेच सकता है, और फिर बाप ने बेच दिया और बाद में बाप मोहताज हुआ, उसको नफके की हाजत पड़ गई, तो बाप अब इसमें से अपना नफका वसूल कर सकता है, इस नाबालिग बच्चे के माल में से अपना नफका वसूल कर सकता है। तो कहते हैं सुम लहू अजमीन हु भी नफकती ही, फिर बाप के लिए जायज है कि वो इस माल में से ले ले भी नफकती ही अपने नफके को, ले अनहू मिन जिन्स हक ही, इसलिए क्योंकि ये माल जो है ये भी उस बाप के हक की जिन्स में से है। वह इन कान लिल इब्न अल गाइबी माल उनफी यदि अब अवैही व अनफका मिनहु लम यज़मना, अब दूसरी सूरत है कि गायब बेटे का कुछ माल मां बाप के पास मौजूद है, दिरहम और दीनार वगैरह हैं, और वो बेटा गायब है और मां बाप को नफके की हाजत हुई और मां बाप ने इस माल में से फिर अपना नफका वसूल कर लिया, अपने ऊपर कुछ खर्च कर लिया, तो क्या वो जामिन होंगे? कहते हैं नहीं भाई, वो जामिन नहीं होंगे, उन्होंने अपना हक वसूल किया है। भाई कहते हैं वह इनकान अली इब्न अल गाइब माल उनफी यदि अब वही ही, और अगर गायब बेटे का कुछ माल है फी यदि अब वही ही उसके वालिदैन के कब्जे में, व अनफका मिनहु और उन दोनों ने इसमें से खर्च कर लिया, लम यज़मना तो ये दोनों जामिन नहीं होंगे, लिअन्नहुमस्तौफया हक़हुमा इसलिए क्योंकि मां बाप ने अपना हक वसूल किया है, लिअन्ना नफ़क़तहुमा वाजिबतुन क़ब्ल अल-क़ज़ा अलामा मर्रा इसलिए क्योंकि मां बाप का नफका कजा से पहले ही वाजिब है, उस वजह से जो बात गुजर गई। वकद अखजा जिनसल हकी और तहकीक इन दोनों ने अपना जिनसे हक लिया है, وقد اخذا جنس الحق اور ماں باپ نے اپنا جنس حق لیا ہے تو لہذا ان پر زمان نہیں آئے گا. وہ ان کا لہم مال فی یدی اجنبی. دوسری صورت بھائی غائب بیٹے کا مال ایک اجنبی آدمی کے پاس بطور امانت کے موجود ہے. بیٹا غائب ہے لیکن اس نے کچھ درہم اور دینار ایک اجنبی آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوائے تھے اور اس اجنبی آدمی کو پتا ہے کہ یہ اس غائب آدمی کے ماں باپ ہیں اور وہ ماں باپ اپنے نفقے کے محتاج ہوئے. تو اس مودع نے یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے قاضی کی اجازت کے بغیر ہی ماں باپ پر خرچ کر دیا. قاضی کی اجازت کے بغیر ہی ماں باپ پر خرچ کر دیا اور پھر بعد میں بیٹا آیا اور اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے میرا مال کیوں خرچ کیا, تو بیٹا اس سے زمان وصول کر سکتا ہے بھائی. اس لیے کیونکہ جس کے پاس بیٹے نے امانت رکھوائی تھی اس کو اس مال کی حفاظت کی ولایت تو حاصل ہے, اس کو خرچ کرنے کی ولایت حاصل نہیں. لیکن اگر ماں باپ قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے اس اجنبی سے وہ جو مودع تھا قاضی نے اس سے کہا کہ تم اس غائب کے ماں باپ پر اس مال میں سے خرچ کرو, تو پھر اس صورت میں بیٹا واپس آ کر بھی اس غائب آدمی سے زمان وصول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو قاضی نے حکم دیا تھا اور قاضی کا حکم بھی اسی بیٹے کے حکم کی طرح تھا بھائی, کیونکہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان کا نلہ مال انفی یدی اجنبی, اور اگر غائب بیٹے کا کچھ مال ایک اجنبی شخص کے قبضے میں ہے فانفق علیہ ما بغیر اذن القاضی, تو اس اجنبی شخص نے اس غائب بیٹے کے والدین پر خرچ کر دیا بغیر اذن القاضی قاضی کی اجازت کے بغیر ضامین, تو اس صورت میں یہ اجنبی ضامین ہوگا یعنی بیٹا اگر زمان لینا چاہے تو اس سے زمان وصول کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ قضاءً یہ ضامین ہوگا دیانتاً ضامین نہیں. قضاءً ضامین ہونے کا مطلب یہ ہے اگر بیٹا قاضی کے پاس چلا گیا کہ اس نے میری اجازت کے بغیر خرچہ کیوں کیا ہے تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ اس آدمی سے زمان دلوایا جائے گا بیٹے کو. لیکن دیانتاً یعنی اس آدمی اور اللہ کے درمیان اگر معاملہ دیکھا جائے تو اس آدمی پر زمان نہیں ہے, آخرت میں بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے حقداروں پر حق خرچ کیا ہے بھائی, غیر حقداروں پر خرچ نہیں کیا. ماں باپ کا نفقہ اس مال کے اندر بنتا تھا ان کا حق بنتا تھا بھائی. تو کہتے ہیں فانفق علیہما بغیر اذن القاضی ضامینا, تو اس اجنبی نے قاضی کی اجازت کے بغیر ہی اس غائب کے ماں باپ پر خرچ کر دیا ضامینا, تو یہ ضامین ہوگا یعنی قضاء ضامین ہوگا. لانه تصرف فی مال الغیر بغیر ولایت, اس لیے کیونکہ یہ تصرف کرنا ہے غیر کے مال میں بغیر کسی ولایت کے. اس کے پاس تو حفاظت کی ولایت تھی خرچ کرنے کی ولایت تو نہیں تھی. تو کہتے ہیں لانه تصرف فی مال الغیر بغیر ولایت, اس لیے کیونکہ یہ غیر کے مال میں تصرف کرنا ہے بغیر کسی ولایت کے. لانه نائب فی الحفظ لا غیر, اس لیے کیونکہ یہ جو اجنبی ہے یہ حفاظت کے اندر تو اس غائب کا نائب ہے لا غیر, اس کے علاوہ اور چیزوں میں اس کا نائب نہیں ہے, خرچ کرنے میں اس کا نائب نہیں ہے. تو کہتے ہیں لانه نائب فی الحفظ لا غیر, یہ جو اجنبی ہے یہ حفاظت کے اندر تو اس غائب کا نائب ہے لا غیر, اس کے علاوہ اور چیزوں میں نہیں. بخلاف ما اذا امرہ القاضی, بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کو قاضی نے حکم دیا ہو. لان امرہ ملزم, اس لیے کیونکہ قاضی کا جو حکم ہوتا ہے ملزم وہ لازم کرنے والا ہے, وہ نفقے کو یا اور کسی بھی چیز کو لازم کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں لان امرہ ملزم, اس لیے کیونکہ قاضی کا حکم جو ہے چیز کو لازم کر دیتا ہے. لعموم ولایتی ہی, قاضی کی عموم ولایت کی وجہ سے کہ اس کو ولایت عامہ حاصل ہے سب پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. وہ ایدا زمینہ جی, اب صورت یہ کہ اس اجنبی نے ماں باپ پر خرچ کر دیا اجازت کے بغیر ہی اور پھر بیٹا آیا اور بیٹا اس کو قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے حکم دیا کہ تم نے اجازت کے بغیر خرچ کیا ہے لہذا تمہیں زمان دینا پڑے گا. چنانچہ اس اجنبی نے بیٹے کو زمان دے دیا, اجنبی نے بیٹے کو زمان دے دیا, اور یہ جو اجنبی پر زمان آیا یہ کس کی وجہ سے آیا, मां बाप पर खर्च करने की वजह से, तो क्या अब अजनबी मां बाप पर रुजू कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये नुकसान पहुंचा है लिहाजा वो अब मुझे वापस अदा करो? कहते हैं नहीं, मां बाप पर रुजू नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं रुजू कर सकता, मां बाप की वजह से उसको यह नुकसान हुआ है। कहते हैं कि जब इस अजनबी ने बेटे को जमान दे दिया, जब जमान दे दिया तो अजनबी ने वो जो माल दिया था मां बाप को, अजनबी उसका मालिक बन गया। और अभी नहीं मालिक बना, जिस वक्त मां बाप को दे रहा था उसी वक्त से मालिक बन गया था। भाई ये निस्बत कब की तरफ की जाएगी? ये जो जमान अभी दे रहा है लेकिन ये मिल्कियत की निस्बत उस जमाने माजी में जब वो अदा कर रहा था मां बाप को, उसकी तरफ की जाएगी, क्योंकि उस अदा करने की वजह से इस पर जमान आया है। तो लिहाजा ये अजनबी उस अदाशुदा माल का मालिक बन गया अदायगी के वक्त ही। तो गोया जिस वक्त ये अदा कर रहा था तो अपना माल अदा कर रहा था, उस बेटे का माल अदा नहीं कर रहा था। और जब अपना माल अदा कर रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, तो ये मुतबर्रिया हुआ। एक चीज इस पर लाजिम नहीं थी, ये वैसे खर्च कर रहा है और उसके अंदर अब यह रुजू नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह ईदा जमीना, और जब ये अजनबी जामीन हुआ तो ला यरजिउ अलल काबिजी, तो ये कब्जा करने वाले पर रुजू नहीं करेगा, यानी मां बाप पर रुजू नहीं करेगा। कब्जा किसने किया था? मां बाप ने। तो कहते हैं वह ईदा जमीना, जब ये अजनबी जामीन हुआ तो ला यरजिउ अलल काबिजी, तो ये कब्जा करने वाले यानी मां बाप पर रुजू नहीं करेगा। लिअन्नहु मलकहु बिज़्ज़मानी, इसलिए क्योंकि ये अजनबी जो है उस माल का मालिक बन गया बिज़्ज़मानी, जमान की वजह से। फज़ाहरा अन्नहु काना मुतबर्रिअन बिही, तो ये जाहिर हुआ कि ये उस माल के देने में मुतबर्रिअ था। मैंने बताया था तबर्रु इसे कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई चीज किसी को देना जो आप पर लाजिम ना हो। आप फकीर को अपनी तरफ से पैसे देते हैं तो ये पैसे आप पर लाजिम नहीं है, ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसको तबर्रु कहते हैं। तो मालूम हुआ ये अजनबी भी मां बाप पर जब खर्च कर रहा था, उनको माल दे रहा था, तो उसमें मुतबर्रु था। तो कहते हैं फजा हरा अन्नहु काना मुतबर्रिअन बिही, तो ये बात जाहिर हो गई कि ये शख्स उस माल के देने में मुतबर्रिअ था। आगे देखिए वह इदा कजल काजी लिल वलदी वल वालिदैनी वदविल अरहामी बिन नफकति फमजत मुद्दतुन सकतत। भाई बीवी के मसले के अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि काजी जब बीवी के लिए नफका मुकर्रर कर दे, या खावंद गायब है, काजी नफका भी मुकर्रर कर देता है और बीवी को कर्जा लेने का हुक्म भी दे देता है, तो इस सूरत में यह नफका खावंद के जिम्मे दैन होता चला जाएगा। जब काजी ने मुकर्रर कर दिया अब खावंद नफका अदा नहीं करेगा, तो जितनी मुद्दत तक अदा नहीं करेगा वो सारा इस खावंद के जिम्मे दैन हो जाएगा, इसको बाद में अदा करना पड़ेगा। लेकिन और रिश्तेदारों के नफके में फर्क है भाई, बीवी का नफका तो देन बनता था लेकिन बाकी रिश्तेदारों का नफका देन नहीं बनेगा। मसलन काजी ने औलाद का या वालिदैन या और करीबी महरम रिश्तेदारों का नफका वाजिब कर दिया और फिर कुछ मुद्दत गुजर गई और इस आदमी ने नफका अदा नहीं किया, तो क्या इनका नफका इस आदमी के जिम्मे देन होगा? कहते हैं नहीं, यहां पर जब मुद्दत गुजर जाएगी तो नफका साकित हो जाएगा। वजह यह कि यहां पर जो नफका आया है वो हाजत और जरूरत की वजह से है। यहां पर जो नफका इस आदमी पर वाजिब हुआ है वो जरूरत और हाजत की वजह से वाजिब हुआ है, और जब कुछ मुद्दत गुजर गई मालूम हुआ उसके अंदर उन लोगों की हाजत पूरी हो गई, जब हाजत पूरी हो गई तो वो अब उस शख्स के जिम्मे देन भी नहीं होगा। जबकि बीवी का जो नफका होता है वो तो एहतिबास की वजह से होता है, और जब एहतिबास मौजूद है तो खावन के जिम्मे नफका भी वाजिब है। फर्क समझ में आया? बीवी का नफका किस वजह से होता है? एहतिबास की वजह से। लिहाजा जब काजी ने फैसला कर दिया तो वह एहतिबास तो मौजूद है, तो वह नफका देन होता चला जाएगा। जबकि वालिदैन वगैरह का नफका जो होता है वह हाजत और जरूरत की वजह से है, और काजी के फैसले के बाद भी कुछ मुद्दत गुजर गई और इस आदमी ने नफका अदा नहीं किया, मालूम हुआ इस दौरान की इन लोगों की हाजत पूरी हो गई। जब हाजत पूरी हो गई तो अब इस शख्स पर वह नफका बतौर देन के भी लाजिम नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? हां, अलबत्ता एक सूरत है, अगर इन लोगों को काजी ने कर्जा लेने का हुक्म दिया जी। औलाद को या वालिदैन को या करीबी महरम रिश्तेदार को काजी ने कर्जा लेने का हुक्म दिया कि तुम उस गायब के जिम्मे पर कर्ज लेते रहो और अपने ऊपर खर्च करते रहो, वो आकर अदा करेगा, तो फिर इस सूरत में ये नफका उस पर देन होगा। तो फर्क समझ में आया, बीवी के लिए काजी नफके का फैसला करे या कर्जा लेने का हुक्म दे, दोनों सूरतों में उसका नफका अब खावन के जिम्मे देन होता चला जाएगा, जबकि और रिश्तेदार जो हैं उनके अंदर काजी के फैसले से वो देन नहीं बनेगा, बल्कि अगर काजी कर्ज लेने का हुक्म दे दे इनको, फिर वो नफका देन बनेगा। फर्क समझ में आ गया। तो कहते हैं वह इदा कजल काजी लिल वलदी वल वालिदैन वदविल अरहामी बिन नफकती, और जब काजी फैसला कर दे औलाद के लिए और वालिदैन के लिए और करीबी महरम रिश्तेदारों के लिए बिन नफकती नफके का, फमजत मुद्दत, उन फिर कुछ मुद्दत गुजर गई और इसने नफका अदा नहीं किया, तो सकतत, तो नफका साकित हो जाएगा। लिअन्न नफकता हाउलाई तजिबु किफायतन लिल हाजती, इसलिए क्योंकि इन लोगों का नफका वाजिब हुआ है, किफायतन लिल हाजत, हाजत की किफायत के लिए, हाजत पूरी करने के लिए। हत्ता ला तजिबु माल या सारी, याद रखो यहां भी हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब देने की शराइत यहां पूरी नहीं, तो यहां तजिबु पर हम रफा पड़ेंगे। हत्ता के नसब देने की दो शराइत मैंने जिक्र की हैं, एक ये कि हत्ता का माबाद वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ नजर करते हुए, और दूसरी शर्त यह कि वहां हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे, और यहां ये शर्तें पूरी नहीं, लिहाजा यहां हत्ता नसब नहीं देगा। तो कहते हैं हत्ता ला तजिबु माल या सारी, यहां तक के मालदारी के साथ इनका नफका वाजिब नहीं होता, अगर ये सारे मालदार हैं फिर इनका नफका वाजिब नहीं होता। वकद हसलत भी मुजिल मुद्दती, और तहकीक नफका तो हासिल हो गया मुद्दत के गुजरने से, जब मुद्दत गुजर गई मालूम हुआ इनको नफका मिल चुका है, इस दौरान इनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। बिखिलाफ नफकत ज़ौजती, बखिलाफ बीवी के नफके के, इदा कजा भी हल काजी, जब उसका काजी फैसला कर दे, ले अन्हा तजिबु माई असारिहा, इसलिए क्योंकि बीवी का नफका वाजिब होता है बावजूद बीवी के मालदार होने के, क्योंकि वो तो इख्तिबास का बदला है भाई, कि बीवी ने अपने आप को खावन के लिए घर में रोक कर रखा है। तो कहते हैं लिया नहा तजिमु माया सारीहा, इसलिए क्योंकि बीवी का नफका बीवी की मालदारी के बावजूद वाजिब होता है, फला तस्कुतु बिहुसूल इस्तिग्ना फीमा मजा, तो लिहाजा वो नफका साकित नहीं होगा मालदारी या बेनियाजी हासिल होने से, फीमा मजा उस जमाने में जो गुजर चुका है। तो बीवी का नफका तो मालदारी के बावजूद वाजिब होता है, तो अगरचे बीवी की हाजत पूरी हो गई है गुज़श्ता जमाने के अंदर, लेकिन हाजत पूरी होने के बावजूद नफका फिर भी खावन के जिम्मे रहेगा भाई। तो कहते हैं फला तस्कुतु बिहुसूल इस्तिग्ना इफीमा मजा, लिहाजा बीवी का नफका साकित नहीं होगा बिहुसूल इस्तिग्ना इबेनियाजी हासिल होने की वजह से, फीमा मजा उस जमाने में जो गुजर चुका है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं इल्ला अय्यज़न अल्काजी बिल इस्तिदानति अलैही, मगर यह कि काजी इजाजत दे बिल इस्तिदानति अलैही उस आदमी पर कर्ज लेने का। ये मतन है, मतन को पिछले मतन से जोड़ें भाई, पीछे क्या आया था कि औलाद या वालिदैन या और करीबी महरम रिश्तेदार जब उनके नफके का काजी फैसला कर दे और फिर उसके बाद भी कुछ मुद्दत तक ये आदमी अदा न करे तो वो नफका साकित हो जाएगा, वो दैन नहीं बनेगा। इल्ला अय्यज़न अल्काजी बिल इस्तिदानति अलैही, मगर यह कि काजी इजाजत दे दे उस आदमी पर कर्ज लेने का। काजी ने ये औलाद को या वालिदैन को या करीबी महरम रिश्तेदारों को इनका नफका भी वाजिब किया और इनको कर्ज लेने की भी इजाजत दे दी, तो फिर इस सूरत में अब गुज़श्ता अय्याम का नफका भी इस पर देन हो जाएगा, वो देना पड़ेगा। ये माना है इल्ला अय्यज़न अल्काजी, मगर ये कि काजी इजाजत दे दे बिल इस्तिदानति अलैही उस गायब आदमी पर कर्ज लेने का। लिअन्न अल्काजी लहू विलायतुन आम्मतुन, इसलिए क्योंकि काजी जो है उसको विलायत आम्मा हासिल होती है, यानी तमाम लोगों पर उसका हुक्म नाफिज होता है। फसार इज्नुहु का अम्रिल गाइबी, तो उस काजी की इजाजत ऐसे ही हो गई जैसे कि गायब आदमी का अपना हुक्म है, जैसे गायब आदमी खुद ही हुक्म दे रहा है भाई। काजी की इजाजत इसी की तरह हो गई। फसार इज्नुहु का अमरिल गाइबी, तो काजी की इजाजत उस गायब आदमी के हुक्म की तरह हो गई। फयसीरु दैनन फी जिम्मती ही, तो लिहाजा यह दैन हो जाएगा उस गायब आदमी के जिम्मा में। फलायस कुतुबी मुजिल मुद्दती, तो यह मुद्दत के गुजरने से साकित नहीं होगा। आगे देखिए, फसलुन वअलल मौला अय्युन फिका अला अमतिही वअब्दिही जी। इस फसल के अंदर अब साहिब हिदाया गुलाम और बांदी के नफके को बयान फरमाएंगे। साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि गुलाम या बांदी का नफका भी उनके मालिक पर वाजिब है भाई। तो कहते हैं वअलल मौला अय्युन फिका अला अमतिही वअब्दिही, और आका पर वाजिब है कि वो खर्च करे अपनी बांदी पर और अपने गुलाम पर। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम फिल ममालिक, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के कौल मुबारक के जो आपने ममलूकों के बारे में फरमाया, जो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया फिल ममालिक ममलूकों के बारे में। हुजूर फरमाते हैं इन्नहुम इख्वानुकुम, कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये जो ममलूक हैं ये तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु तआला तहता आईदीकुम, अल्लाह ने इनको तुम्हारे हाथ के तहत कर दिया है, यानी इनको तुम्हारे कब्जे में दे दिया है। अतइमुहुम मिम्मा ताकुलूना, इनको भी तुम खिलाओ। मिम्मा ताकुलूना, उसमें से जिसमें से तुम खाते हो, यानी इनको भी वही खिलाओ जो तुम खाते हो। व अलबिसूहुम मिम्मा तलबसूना, और इनको भी उसमें से पहनाओ जो तुम पहनते हो। वला तुअज़्ज़िबु इबादल्लाह, और अल्लाह के बंदों को अजाब न दो, उनको तकलीफ न दो। तो यहां हदीस के अंदर क्या आया कि इनको भी वही खिलाओ जो तुम खाते हो और इनको भी वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। उलमा फुकहा फरमाते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि इंसान जो कुछ खुद खाए वही अपने गुलाम या बांदी को भी खिलाए, जो कुछ इंसान खुद पहने वही अपने गुलाम या बांदी को भी पहनाए। तो भाई हदीस में तो आ रहा है कि उनको वही खिलाओ जो तुम खाओ, तो जवाब यह कि यहां मुराद है उस जिन्स में से खिलाओ, इनको भी उस जिन्स में से खिलाओ, यानी इनको भी खाना खिलाओ और इनको भी कपड़े पहनाओ, यानी मुनासिब किस्म के कपड़े और खाना इनको भी दो। यह जरूरी नहीं कि वही चीज उनको भी खिलाए जो खुद खाए और वही चीज उनको भी पहनाए जो खुद पहने, यह जरूरी नहीं है भाई। फिर एक दफा तर्जमा देख लीजिए हदीस का। हुजूर अलैह सलाम फरमाते हैं गुलामों और बांदियों के बारे में इन्नहुम इख्वानुकुम, ये तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु तआला तहता आईदीकुम, अल्लाह ने इनको तुम्हारे कब्जे के तहत कर दिया है। अतइमुहुम मिम्मा ताकुलूना, इनको भी वही खिलाओ जो तुम खाते हो, यानी उसी की जिन्स में से खिलाओ जो तुम खाते हो। व अलबिसूहुम मिम्मा तलबसूना, और इनको भी उसी की जिन्स में से पहनाओ जो तुम पहनते हो। वला तुअज़्ज़िबु इबादल्लाह, और अल्लाह के बंदों को अजाब न दो। फइनिम तनअ वकान लहुमा कस्बुन इक्तसबा व अनफका, भाई अगर आका इन पर खर्च नहीं करता तो फिर अगर ये खुद कमा सकते हैं तो खुद कमाएंगे और अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने नफके का इंतजाम करेंगे। तो कहते हैं फइनिम तनअ, और अगर आका रुक गया यानी वो इन पर खर्च नहीं कर रहा, इनको नफका नहीं दे रहा। वकान लहुमा कस्बुन, और इन दोनों के लिए कमाई है, यानी ये कमा सकते हैं। एक तसबा, तो ये दोनों कमाएंगे। व अनफका, और अपने ऊपर ये दोनों खर्च करेंगे। लिअन्न फीही नज़रन लिल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि इसमें दोनों जानिबों की रियायत है, इसमें दोनों जानिब की रियायत है। गुलाम और बांदी की भी रियायत हो गई क्योंकि उनको नफका मिलेगा, वो जिंदा रहेंगे, और आका की भी रियायत हो गई कि गुलाम और बांदी उसी के ममलूक रहेंगे, इसी के कब्जे में रहेंगे, तो इसमें देखो दोनों की रियायत हो गई। तो कहते हैं लिअन्न फीही नज़रन लिल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोनों जानिब की रियायत है। हत्ता यबकल ममलूक हय्यन, यहां तक कि वो ममलूक जो है वो जिंदा रहेगा। व यबका फीही मिल्कुल मालिकी, और इसके अंदर मालिक की मिल्कियत भी बाकी रहेगी। व इल्लम यकुन लहुमा कस्बुन, और अगर इनकी कोई कमाई नहीं है यानी ये कमा नहीं सकते। भी अनकान अब्दन जमीनन, बाई सूरत के ये गुलाम अपाहज है, माजूर है। और जारियतन ला यू आ जरू मिसलुहा, यह ऐसी बांदी है कि इस जैसी बांदी को उजरत पर नहीं दिया जाता, ऐसी बांदी है जिसको उजरत पर नहीं दिया जाता। मसलन जवान बांदी है और हसीनो जमील है, तो उसको अगर उजरत पर देगा उसमें तो फितने का खतरा है भाई। तो अगर गुलाम अपाहज है वो भी कोई काम वगैरह नहीं कर सकता और बांदी भी खिदमत वगैरह के लिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो हसीन और जमील है, अगर वो खिदमत के लिए देंगे तो फितने का खतरा है। तो अब तो ये दोनों कमा नहीं सकते और इनका आका इनको नफका भी नहीं दे रहा, तो फिर इस सूरत में काजी इसके आका को मजबूर करेगा कि इनको बेच दो, इनको बेच दो, तो वो आका बेच देगा, तो आका के पास पैसे वसूल हो गए, तो आका की भी रियायत हो गई और आगे कोई खरीदार होगा तो वो इनके नफके का इंतजाम करेगा, तो गुलाम और बांदी की भी रियायत हो गई। तो कहते हैं वह इन लम यकुन लहुमा कस्बुन, और अगर इस गुलाम या बांदी के लिए कमाई नहीं है यानी ये कमा नहीं सकते, भी अनकान अबदन जमीनन बाई सूरत के ये गुलाम अपाहज है, औजारियतन ला युआ जरू मिसलुहा, यह ऐसी बांदी है कि इस जैसी बांदी को उजरत पर नहीं दिया जाता, तो उज बिरल मौला अला बैहिमा, तो इनके आका को मजबूर किया जाएगा इन्हें बेचने पर, ले अन्नहुमा मिन अहले इस्तेहकाकी, इसलिए क्योंकि ये गुलाम और बांदी जो हैं ये अहले इस्तेहकाक हैं, ये नफके के मुस्तहिक हैं, लिया नहुमा मिन अहले इस्तेहकाक, इसलिए क्योंकि ये गुलाम और बांदी जो हैं ये अहले इस्तेहकाक हैं, वफिल बैई ईफा उहक हिमा, और बेचने के अंदर इनके हक की अदायगी है, व इबका उहकिल मौला, और नीज इस बेचने के अंदर आका का हक बाकी रखना है, बिल खलफी बदल के जरिए, यानी वो जो समन वसूल हो जाएंगे उसके जरिए आका का हक भी बाकी रहेगा। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वफिल बैई ईफा उहक हिमा व इबका उहकिल मौला बिल खलफी, और बेचने के अंदर गुलाम या बांदी के हक की अदायगी भी है और आका के हक को बाकी रखना भी है, बिल खलफी बदल के जरिए, बिखिलाफ नफकति जौजती लिअन्नहु तसीरु दैनन फकाना ताखीरन अला मा ज़करना व नफकतुल ममलूक ला तसीरु दैनन फकाना इबतालन। भाई देखिए, अगर गुलाम या बांदी खुद नहीं कमा सकते और आका भी उनको नफका नहीं दे रहा तो आका को मजबूर करेंगे कि इस गुलाम या बांदी को बेच दो, जबकि इसके मुकाबले में पीछे मसला गुजरा था कि अगर खावन तंगदस्त हो गया यहां तक कि वो बीवी का नफका भी अदा नहीं कर सकता, तो वहां पर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि दोनों में जुदाई नहीं करवाएंगे बल्कि काजी नफका मुकरर कर देगा और वो नफका खावंद के जिम्मे देन होता चला जाएगा, तो वहां पर औरत का हक सिर्फ मुअख्खर हो रहा था, हक उसका मुतय्यन कर दिया काजी ने, अब वो देन बनता जा रहा है उसके खावंद के जिम्मे, तो वहां पर इसलिए हमने जुदाई का फैसला नहीं किया क्योंकि वहां औरत का हक सिर्फ मुअख्खर हुआ था, बातिल नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर अगर हम आका को इस गुलाम या बांदी को बेचने का हुक्म नहीं देंगे तो फिर इस सूरत में गुलाम और बांदी का हक बातिल हो जाएगा, मुअख्खर नहीं होगा बल्कि बातिल हो जाएगा। फर्क समझ में आ गया? तो कहते हैं बिखिलाफ नफकत ज़ौजी, बखिलाफ बीवी के नफके के, लिअन्नहु तसीरु दैनन, इसलिए क्योंकि वो तो दैन बन जाएगा, फकान ताखीरन अला मा ज़करना, तो ये तो उसको मुअख्खर करना है उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, व नफकतुल ममलूक ला तसीरु दैनन, जबकि ममलूक यानी गुलाम या बांदी का जो नफका है वो तो दैन नहीं बनेगा, फकान इबतालन, तो वो तो नफके को बातिल करना है, लिहाजा इसलिए यहां आका को बेचने पर मजबूर करेंगे और वहां पर जुदाई नहीं करवाएंगे, व बिखिलाफ साइरिल हैवानाती, और बखिलाफ इसके बाकी हैवानात, बाकी हैवानात भाई एक आदमी है उसके पास गाय बैल वगैरह उसने कुछ रखे हुए हैं और वो उन पर खर्च नहीं करता, तो कहते हैं इस सूरत में उनके मालिक को मजबूर नहीं किया जा सकता, काजी जबरन उसको हुक्म नहीं दे सकता कि इन जानवरों को तुम्हें चारा वगैरह खिलाना पड़ेगा, जबरन काजी यह हुक्म नहीं दे सकता, वजह यह कि यह अहले इस्तेहकाक नहीं है, ये जानवरों का आका पर हक नहीं है, गुलाम और बांदी का तो आका पर हक था कि वो उसको नफका दे, लेकिन ये जानवरों का इनके मालिक पर हक नहीं। याद रखो काजी जब कोई फैसला करता है तो जरूरी है कि जिसके हक में फैसला कर रहा हो वो हकदार होना चाहिए, उसका दूसरे पर हक बनता हो, भाई वो मुस्तहिक हो उस चीज का, फिर ही काजी फैसला कर सकता है। और यहां पर ये जो हैवानात हैं इनका तो अपने मालिक पर कोई हक नहीं है भाई। तो कहते हैं वह बिखिलाफ साइरिल हैवानाती, और बखिलाफ बाकी हैवानात के, लिअन्नहा लैसत मिन अहले इस्तेहकाकी, इसलिए क्योंकि ये जो बाकी हैवानात हैं ये अहले इस्तेहकाक नहीं हैं। फला युजबरु अला नफकतिहा, लिहाजा मालिक को मजबूर नहीं किया जाएगा इनके नफके पर। इल्ला अन्नहु युमरु बिही, मगर यह कि उस मालिक को हुक्म दिया जाएगा। फीमा बैनहु व बैन अल्लाह ताला, उसके और अल्लाह के दरमियान, यानी ये उसका और अल्लाह का मामला है। हैवानात पर जुल्म कर रहा है तो ये उसका और अल्लाह का मामला है, तो उसको दयानतन हुक्म दिया जाएगा, कजाअन हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु युमरु बिही फीमा बैनहू व बैन अल्लाह ताला, मगर ये उस मालिक को हुक्म दिया जाएगा उसके और अल्लाह के दरमियान। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन तअदीबिल हयवान, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हैवान को अजाब देने से, उसको तकलीफ देने से मना फरमाया है। वफी ही जालिका, और खर्च न करने में तो अजाब देना है, और हुजूर ने तो अजाब देने से मना फरमाया है। तो कहते हैं लिया नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन तअदीबिल हयवानी, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हैवान को अजाब देने से, उसको तकलीफ देने से मना फरमाया है। वफी ही जालिका, और खर्च न करने में तो हैवान को अजाब देना है। व नहा अन इजाअतिल माली, और नीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने माल को जाया करने से मना फरमाया है। यह आदमी हैवानात को नहीं खिलाएगा, ये तो हलाक हो जाएंगे, तो ये तो इसका अपना माल हलाक हो जाएगा, और हुजूर ने माल को जाया करने से मना फरमाया है। तो कहते हैं वनहा अन इज़ाअतिल माली, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने माल जाया करने से मना फरमाया है। वफीही इज़ाअतुहु, और इस खर्च न करने के अंदर तो इस माल को जाया करना है। नुआन अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला से एक रिवायत है कि अन्नहू युजबरू, के मालिक को मजबूर किया जाएगा, काजी हुक्म देगा कि इन पर खर्च करो। वल असह मा कुलना, और ज्यादा सही वही है जो हमने कहा। साहिबे हिदाया क्या फरमाते हैं, ज्यादा सही वही बात है जो हमने कही। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला ने जो फरमाया वो भी सही है, लेकिन जो हमने कहा वो ज्यादा सही है, इसलिए क्योंकि ये हैवानात अहले इस्तेहकाक नहीं। जब अहले इस्तेहकाक नहीं तो काजी जबरन फैसला नहीं कर सकता। काजी के फैसला करने के लिए जरूरी है कि जिसके हक में वो फैसला करे वो अहले इस्तेहकाक होना चाहिए, तो यहां काजी यह फैसला कर ही नहीं सकता क्योंकि हैवानात अहले इस्तेहकाक नहीं है भाई। तो कहते हैं वल असहु मा कुलना, और ज्यादा सही वो है जो हमने कहा। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए किताबुल अताक, अताक कहते हैं आजादी को, तो इस किताब के अंदर आजादी के अहकाम बयान फरमाएंगे साहिबे हिदाया। किताबुल अताक ये आजादी की किताब है, यानी उसके अहकाम पर मुश्तमिल है। अल इताक तसरुफुन मंदूबुन इलैही, इताक का माना है आजाद करना। अताक का क्या माना था, आजाद होना, और इताक का माना आजाद करना। तो अल इताक तसरुफुन मंदूबुन इलैही, इताक यानी आजाद करना ऐसा तसरुफ है, मंदूबुन इलैही, जिसकी तरफ दावत दी गई है, यानी जिसकी तरगीब दी गई है। आप जानते हैं शरीयत के अंदर गुलाम या बांदी को आजाद करना अजीम अजर व सवाब का सबब है भाई। तो ये आजाद करना ऐसा तसरुफ है, मंदूबुन इलैही, जिसकी तरफ दावत दी गई है, जिसकी तरगीब दी गई है। काला अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, अय्युमा मुस्लिमिन आतका मुमिनन, जिस मुसलमान ने भी किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया, आतकल्लाहु बिकुल्लि उज्विन मिनहु, तो अल्लाह आजाद फरमाएंगे उस गुलाम के हर उज्व के बदले में। उज्वम मिनन नारी, इस आजाद करने वाले के उज्व को आग से। जो शख्स किसी गुलाम को आजाद करता है तो अल्लाह ताला इस आजाद शुदा गुलाम के हर उज्व के बदले में, इस आजाद करने वाले के हर उज्व को आग से आजाद फरमाएंगे। तो अय्युमा मुस्लिमिन आतका मोमिना, जिस मुसलमान ने भी मोमिन गुलाम को आजाद किया, आतकल्लाहु बिकुल्ल उज्विम मिनहु उज्वम मिनन नारी, तो अल्लाह इस गुलाम के हर उज्व के बदले में इस आजाद करने वाले के हर उज्व को आग से आजाद करेंगे। वलिहाज़ा तहब्बू, और इसीलिए उलमा ने यह बात पसंद फरमाई है, अय्युतिकर रजुलुल अब्दा, कि मर जो है वो गुलाम को आजाद करे, वल मर अतुल अमता, और औरत जो है वो बांदी को आजाद करे, लियतहक्कका मुकाबलतुल आज़ा बिल आज़ा, ताकि आज़ा के साथ आज़ा का मुकाबला पाया जाए। भाई हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला गुलाम के हर उज के बदले आजाद करने वाले के हर उज को आग से आजाद फरमा देते हैं, तो उलमा ने इस बात को पसंद किया है कि अगर आदमी हो तो वो गुलाम को आजाद करे, और अगर औरत है तो वो बांदी को आजाद करे। तो जब मर्द गुलाम को आजाद करेगा तो गुलाम के हर उज के बदले में मर्द का हर उज जो है जहन्नुम से आजाद हो जाएगा, हत्ता के गुलाम की शर्मगाह के बदले इस आजाद करने वाले की शर्मगाह जहन्नुम से आजाद हो जाएगी। और इसी तरह जब औरत बांदी को आजाद करेगी तो बांदी के हर उज के बदले में इस औरत का हर उज जहन्नुम से आजाद हो जाएगा। तो इसलिए उलमा ने पसंद किया है कि मर्द ने आजाद करना है तो वो गुलाम को आजाद करे, और औरत ने आजाद करना है तो वो बांदी को आजाद करे। लियतहक्कका मुकाबलतुल आज़ा बिल आज़ा, ताकि आज़ा का आज़ा के साथ मुकाबला पाया जाए। قال العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه, काला, काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। साहिब कुदूरी फरमाते हैं अल इत्क यसिहु, यहां इत्क बमाने एताक के है, यानी ये मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा है। अल इत्क यसिहु, आजाद करना सही है, मीनल हुर्री, आजाद आदमी से, यानी आजाद करने वाला जो मोतिक है, जो गुलाम को आजाद करना चाहता है उसको आजाद होना चाहिए। अल बालिगी, और बालिग हो भाई, न बालिग ना हो। अल आकिल, और अकल वाला हो, मजनून ना हो भाई। तो قال صاحب قدوري فرماتے ہیں العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه, کہ آزاد کرنا صحیح ہے آزاد بالغ عاقل آدمی کی طرف سے, فی ملکہ, اپنی ملکیت میں۔ تو چار شرطیں ذکر کر دیں۔ ایک شخص غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ آزاد کرنے والا خود آزاد ہو, خود آزاد ہو۔ دوسری شرط, ये बालिग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि बच्चे की आजादी मोतबर नहीं, बच्चा अपने गुलाम को आजाद करे भी तो वह आजाद नहीं होता। नीज ये आजाद करने वाला आकिल होना चाहिए, क्योंकि मजनून अगर अपने गुलाम को आजाद करता है तो उसका कोई एतबार नहीं, वो गुलाम आजाद नहीं है भाई, क्योंकि उसकी अकल ही नहीं है भाई। और नीज वो गुलाम आदमी की अपनी मिल्कियत में हो, गैर का गुलाम आजाद करेगा तो वह आजाद नहीं होगा भाई। बात समझ में आ गए। तो चार शर्तें जिक्र फरमा दी साहिब कुदूरी ने, कि आजाद करने वाला वो आजाद होना चाहिए, और आकिल होना चाहिए, और बालिग होना चाहिए, और वो गुलाम उसकी मिल्कियत होनी चाहिए। तो कहते हैं अल इत्क यसिहु मिनल हुर्र बालिग आकिल फी मिल्की, और आजाद करना सही है आजाद बालिग आकिल मर्द की तरफ से, फी मिल्की, अपनी मिल्कियत में। शरतल हुर्रियता, यह इबारत तवज्जो से सुनना भाई। शरतल हुर्रियता, साहिब कुदूरी ने आजादी की शर्त लगाई है। अल हुर्रियता यह मफूल है शरता फेल के लिए। शरतल हुर्रियता, साहिब कुदूरी ने आजादी की शर्त लगाई है। भाई आजादी की शर्त क्यों लगाई? वजह यह कि कोई शख्स गुलाम आजाद करना चाहता है तो गुलाम इसका ममलूक होगा तभी आजाद हो सकता है, और अगर ये शख्स खुद ही गुलाम है तो गुलाम तो किसी चीज का मालिक ही नहीं होता, वो कैसे किसी दूसरे को आजाद कर सकता है। तो कहते हैं शरत अल हुर्रियत, साहिब कुदूरी ने आजादी की शर्त लगाई। लिअन्न अल इत्क ला यसिहु इल्ला फिल मिल्क, इसलिए क्योंकि आजाद करना यह दुरुस्त नहीं होता मगर अपनी मिल्कियत में। वला मिल्क लिल ममलूक, और ममलूक की तो कोई मिल्कियत नहीं होती। वल बुलूगा, इसको मंसूब पढ़ना है। अलबुलूह का आतफ है अलहुर्रियत पर और अलहुर्रियत मफूल था शारता फेल के लिए, तो साहिब कुदूरी ने हुर्रियत की भी शर्त लगाई है वल बुलूगा और बालिग होने की भी शर्त लगाई है कि आजाद करने वाला बालिग हो। लिअन्न सबिया लैस मिन अहलिही, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है वो अहले इत्क नहीं है, यानी अहले इताक नहीं है, वो गुलाम को या बांदी को आजाद नहीं कर सकता। वजह यह कि गुलाम या बांदी को जब आजाद करेंगे तो जाहिरी तौर पर यह अपना माल बर्बाद किया जा रहा है, अगरचे उखरवी एतबार से यह अजीम अजर सवाब का बाइस है लेकिन जाहिरी एतबार से यह अपना नुकसान है, तो लिहाजा बच्चे को इसकी इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं लिअन्न सबी लैस मिन अहलिही, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है वह अहले इत्क नहीं है। लिकौनिही ज़ररन ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि यह जाहिरी तौर पर ज़रर है, नुकसान है। वलिहादा ला यमलिकुहुल वली यू अलैही, और इसीलिए वली भी बच्चे पर इसका मालिक नहीं होता। एक नाबालिग बच्चा है और उसको किसी ने गुलाम दे दिया, अब उसका वली जो है बच्चे का वली, बच्चे का बाप या दादा, वो इस गुलाम या बांदी को आजाद करना चाहता है। नहीं भाई, ये बच्चे का गुलाम है, आपको इस बात की विलायत नहीं है कि आप बच्चे के गुलाम को आजाद कर दें। आप बच्चे के गुलाम को बेच तो सकते हैं लेकिन मिसले समन में, यानी जितने का ये गुलाम बनता है, जितनी इस जैसे गुलाम की कीमत होती है उतनी कीमत में आप इस गुलाम को बेच सकते हैं, उससे कम कीमत में भी आपको बेचने की इजाजत नहीं, क्योंकि बच्चे का नुकसान है भाई। तो जब कम कीमत के अंदर उस गुलाम को बेचने की इजाजत नहीं है वली को, तो आजाद करने में तो सारा गुलाम ही जाया हो जाएगा, उसकी तो बतरीके औला वली को इजाजत नहीं होगी। यह माना है वलिहादा ला यमलिकुहुल वली यू अलैही, और इसीलिए वली भी बच्चे पर इस गुलाम को आजाद करने का मालिक नहीं होता। वल अकला, इसको भी मनसूब पढ़ें, इसका अतफ भी उसी तरह अलहुर्रियत पर है। तो वल अकला, और साहिब कुदूरी ने अकल की भी शर्त लगाई। लिअन्न अल मजनून लैस बि अहलिन लितसर्रुफी, इसलिए क्योंकि जो मजनून होता है वो अहले तसर्रुफ नहीं होता। वलिहादा लव काल अल बालिगु, और इसीलिए अगर बालिग आदमी ने कहा अअतक्तु व अना सबीयुन, सूरत मसला ये, एक गुलाम जो है काजी के पास आ गया, उसने मुकदमा कर दिया कि काजी साहिब इस आदमी ने मुझे आजाद कर दिया था और अब यह तस्लीम नहीं कर रहा, मैं आजाद हो चुका हूं। तो काजी ने उस आदमी को बुलवाया, उस आदमी ने कहा काजी साहेब अअतक्तु व अना सबीयुन, मैंने इसको उस वक्त आजाद किया था जब मैं बच्चा था। तो इसने देखो आजादी की निस्बत उस वक्त की तरफ कर दी जब इसके पास इख्तियार ही नहीं था गुलाम को आजाद करने का, तो गोया ये शख्स इस आजादी का इनकार कर रहा है, लिहाजा इसी का कौल मुअतबर होगा। तो गुलाम पर बय्यना आएगी क्योंकि अल बय्यना तो अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकरा, तो लिहाजा इस मुनकिर का कौल मुअतबर है भाई। तो कहते हैं वलिहादा लव काल अल बालिगु, और इसीलिए यानी कि बालिग और आकिल होना शर्त है, बालिग और आकिल होना शर्त है, इसी की वजह से अगर बालिग यूं कहे तो मसला यूं होगा। तो कहते हैं वली हादा, और इसी वजह से, यानी बालिग और आकिल होना शर्त है, इसी वजह से लव काल अल बालिगु, अगर बालिग आदमी ने कहा अअतक्तु व अना सबीयुन, कि मैंने आजाद किया था इस हाल में कि मैं बच्चा था, फल कौलु कौलुहु, तो वो कौल जो मुअतबर है वो इसी का कौल है। व कदा लव काल अल मुअतिकु, और इसी तरह अगर आजाद करने वाले ने कहा अअतक्तु व अना मजनून, मैंने आजाद किया था इस हाल में कि मैं मजनून था, व जुनून नुहू काना जाहिरन, इस हाल में कि इस आदमी का जुनून जाहिर है, यानी इस आदमी को जुनून के दौरे पड़ते हैं और सबको पता है इसको जुनून के दौरे पड़ते हैं, और ये अब कह रहा है कि मैंने जुनून की हालत में गुलाम को आजाद किया था, तो इसने आजादी की निस्बत एक ऐसी हालत की तरफ कर दी जो आजाद करने के मुनाफी है। मजनून तो गुलाम को आजाद नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये आदमी इसका कौल मुअतबर है क्योंकि ये इनकार कर रहा है आजादी का, क्योंकि आजादी की निस्बत कर रहा है ऐसे वक्त की तरफ जो आजादी के मुनाफी है भाई। तो कहते हैं वकदा लव काल अल मुअतिकु, और इसी तरह है मसला, यानी मुअतिक का कौल ही मुअतबर है, अगर उसने कहा अअतक्तु व अना मजनून, उनके मैंने आजाद किया था इस हाल में कि मैं मजनून था, व जुनूनुहु काना जाहिरन, इस हाल में कि इस आदमी का जुनून जाहिर हो, यानी सबको पता है इसको जुनून के दौरे पड़ते हैं, अगर इसका जुनून जाहिर नहीं है फिर इसके कौल का एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं वह जुनून हो जाहिरन, इस हाल में कि इसका जुनून जाहिर है, लिवजूद इल इसनाद इला हालतिन मुनाफियतिन, इसलिए क्योंकि निस्बत पाई जा रही है इला हालतिन मुनाफियतिन, एक ऐसी हालत के जो मुनाफी है एताक के। ये जो कहा आतकतु व अना सबीयुन या आतकतु व अना मजनून, इसके अंदर आजादी की निस्बत, आजादी का इस्नाद किया जा रहा है, आजादी की निस्बत की जा रही है एक ऐसी हालत की तरफ जो आजाद करने के मुनाफी है भाई। ये माना है लिवजूद इल इस्नादी इला हालतिन मुनाफियतिन, बवजह इस्नाद पाए जाने के एक ऐसी हालत की तरफ जो इताक के मुनाफी है। वह कदा लौकाल सबीयु, और इसी तरह है मसला अगर बच्चे ने कहा कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुन इज़ाहता लम्तु, एक बच्चा है भाई वो कहता है कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुन, कि हर ऐसा गुलाम जिसका मैं मालिक हूं वो आजाद है, इज़ाहता लम्तु जब मैं बालिग हो जाऊं। कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुन, हर ऐसा ममलूक जिसका मैं मालिक हूं तो वो आजाद है, इज़ाहता लम्तु जब मैं बालिग हो जाऊं। ला यसिहु, तो बच्चे का यह कौल सही नहीं, लिया नहु लई सभी अहलिन लिकौलिन मुलजिमिन, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है कौल मुलजिम का अहल नहीं है भाई। याद रखो एक आम बालिग आदमी जब कोई कौल करेगा, जब कोई बात करेगा वह उस पर लाजिम हो जाएगी। मसलन एक आदमी कहता है मैंने जैद का 10 लाख रुपया देना है, उसने खुद इकरार कर लिया तो अब यह 10 लाख इस पर लाजिम हो गए, यानी जैद अब इसको काजी के पास ले जाकर यह माल वसूल कर सकता है कि काजी साहब इसने लोगों के सामने इकरार किया है कि इसने मेरे पैसे देने हैं। तो देखो यह कौल उस आदमी पर क्या हो गया, लाजिम हो गया। इसी तरह अगर कोई शख्स कसम उठाता है तो वह कसम भी उसको अब पूरी करनी पड़ेगी, वह उस पर लाजिम हो गई। इसी तरह कोई शख्स अगर तालीक करता है, किसी बात को शर्त के साथ मुअल्लक करता है, तो यह तालीक भी उस पर लाजिम हो गई। लेकिन याद रखो बच्चा ऐसा कौल नहीं कर सकता जो उस पर लाजिम हो जाए, क्योंकि बच्चे में अकल कामिल नहीं, वो नासमझ है, तो बच्चे के कौल को बच्चे पर लाजिम नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहां पर भी जब बच्चे ने कहा मेरा हर गुलाम जो है जब मैं बालिग हो जाऊं तो वह आजाद है, तो ये इस कौल को बच्चे पर लाजिम नहीं किया जा सकता, इस बच्चे के इस कौल का कोई एतबार नहीं है, इसके बालिग होने के बावजूद भी इसका कोई गुलाम आजाद नहीं होगा। तो कहते हैं ला यसिहु, बच्चे का यह कौल सही नहीं है, लिअन्नहु लैसा बि अहलिन लिकौलिन मुलजिमिन, इसलिए क्योंकि बच्चा अहल नहीं है लिकौलिन मुलजिमिन, ऐसे कौल का जो लाजिम करने वाला हो, ऐसा कौल जो किसी चीज को उस पर लाजिम करने वाला हो, बच्चा ऐसे कौल का अहल नहीं है। फिर तर्जमा देख लीजिए लिअन्नहु लैसा बि अहलिन लिकौलिन मुलजिमिन, इसलिए क्योंकि बच्चा ऐसे कौल का अहल नहीं है जो उस पर कोई चीज लाजिम कर दे। वला बुद्ध अन यकून अल अब्दु फी मिल्की ही, भाई मतन के अंदर चौथी शर्त आई थी कि वो गुलाम या बांदी जिसको कोई आजाद करता है वो उसकी मिल्कियत होनी चाहिए। कहते हैं वला बुद्ध अन यकून अल अब्दु फी मिल्की ही, और जरूरी है कि वो गुलाम उस आजाद करने वाले की मिल्कियत में हो। हत्ता लौ अअतका अब्द गैरिही ला यन्फुज़ु इत्कुहु, यहां तक कि अगर किसी ने आजाद किया अब्द गैरिही अपने अलावा किसी दूसरे का गुलाम, ला यन्फुज़ु इत्कुहु, तो उसकी आजादी नाफिज नहीं होगी, उसकी आजादी नाफिज नहीं होगी। लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमाने मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया ला इत्का फीमा ला यमलिकुहु बनु आदम, कि ला इत्का फीमा की आजादी नहीं है उस गुलाम या बांदी में, ला यमलिकुहु बनु आदम जिसका इबन आदम मालिक ना हो। ला इत्का फीमा ला यमलिकुहु इब्नु आदम, के उस चीज में आजादी नहीं है जिसका इब्ने आदम यानी इंसान मालिक ना हो। मालूम हुआ अपना गुलाम या बांदी है उसको तो इंसान आजाद कर सकता है, गैर के गुलाम या बांदी को आजाद नहीं कर सकता। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है ला इत्का फीमा ला यमलिकुहु इब्नु आदमा, कि आजादी नहीं है उस ममलूक के अंदर जिसका इंसान मालिक ना हो। भाई देखो साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया हत्ता लौ आतका अब्द गैरिही, यहां तक कि अगर किसी ने दूसरे के गुलाम को आजाद किया, ला यनफुजु इत्कुहू, तो उसकी आजादी नाफिज नहीं होगी। साहिबे हिदाया ने यह नहीं फरमाया ला यसिहु इत्कुहू, उसकी आजादी सही नहीं होगी, यह नहीं कहा, बल्कि यह कहा उसकी आजादी नाफिज नहीं होगी। वजह यह कि इंदल अहनाफ, याद रखो, याद रखो कि गैर की मिल्कियत का आजाद करना भी सही है भाई, अगर मालिक इजाजत दे दे। आपने मालिक से इजाजत ली कि मैं आपके इस गुलाम को आजाद करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? तो मालिक ने इजाजत दे दी, आपने अब उस गुलाम को आजाद कर दिया, तो वो आजाद हो जाएगा। मालूम हुआ गैर के गुलाम को मालिक की इजाजत से आजाद करना इंदल अहनाफ सही है, इसीलिए साहिब हिदाय ने यह फरमाया हत्ता लौ आतका अब्द गैरिही, यहां तक कि अगर किसी ने दूसरे के गुलाम को आजाद किया, ला यनफुजु इत्कुहू, तो उसकी आजादी नाफिज नहीं होगी। यह नहीं कहा कि सही नहीं होगी, सही हो सकती है अगर वो इजाजत दे दे भाई। आगे देखिए वह इदा काल अली आब्दी ही औ अमती ही अंत हुर्रुन, अब वो अल्फाज जिक्र करने लगे हैं साहिब हिदाया जिनके जरिए कोई गुलाम या बांदी आजाद होगा। याद रखो जिस तरह तलाक के अंदर कुछ अल्फाज सरीह हैं और कुछ किनायात हैं, वो अल्फाज जिनसे तलाक वाके होती है कुछ सरीह हैं, यानी उनमें तलाक के अलावा और कोई माना नहीं। एक शख्स अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन, तो इसका माना तलाक है, तलाक के अलावा और कोई माना इसका नहीं है, लिहाजा इसे तलाक वाके हो जाएगी और इसमें नीयत पूछने की भी जरूरत नहीं है। वजह यह कि यहां और किसी माना का इहतमाल ही नहीं है, अगर किसी और माना का इहतमाल होता फिर हम नीयत पूछते कि आपकी क्या नीयत है, तो सरीह के अंदर नीयत की जरूरत नहीं होती, जबकि किनाये के अंदर तो और मानी का भी इहतमाल होता है। खावंद अपनी बीवी से कहता है अंति बाइनुन, तो इसका यह माना भी हो सकता है कि तू मुझसे जुदा है क्योंकि मैं तुझे तलाक दे चुका हूं, और इसका यह माना भी हो सकता है कि तू और औरतों से जुदा है अपनी आदतों के अंदर या हुस्नो जमाल के अंदर। तो किनाये के अंदर चूंकि और मानी का भी इहतमाल होता है, लिहाजा वहां नीयत जरूरी है। तो याद रखो इताक के अंदर भी इसी तरह है, एक शख्स अपने गुलाम या बांदी को आजाद करना चाहता है, अगर उसने कोई सरीह लफ्ज बोला यानी जिसमें आजादी के अलावा किसी और माना का एहतमाल ही नहीं है, मसलन कहता है अंत हुर्रुन, तो आजाद है भाई, इसका तो और कोई माना नहीं है आजादी के अलावा, या कहता है आतक्तुका, मैंने तुझे आजाद कर दिया, इसका माना भी आजादी के अलावा और नहीं है भाई। तो ये सरीह अल्फाज हैं और सरीह अल्फाज में बगैर नीयत के ही गुलाम या बांदी आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर किनाये अल्फाज इस्तेमाल किए तो फिर वहां नीयत जरूरी है, फिर गुलाम या बांदी आजाद होंगे वरना आजाद नहीं होंगे। तो अब पहले सरीह अल्फाज जिक्र कर रहे हैं भाई, कहते हैं वईदा काल अली अब्दी ही औ अमती ही, और जिस वक्त आका ने अपने गुलाम या बांदी से कहा अंत हुर्रुन, तू आजाद है, औ मुअतकुन ऐ अंत मुअतकुन, इसका भी वही माना है, तू आजाद है, औ अतीकुन, अतीक का माना भी आजाद है, मालिक ने कहा अंत अतीकुन, तू आजाद है, औ मुहर्ररुन, मुहर्रर का माना भी आजाद है। तो ये तो था जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया, अंत हुर्रुन या अंत मुअतकुन या अंत अतीकुन या अंत मुहर्ररुन, या जुमला फेलिया इस्तेमाल करता है आका और यूं कहता है कद हर्ररतु का, तहकीक मैंने तुझे आजाद कर दिया, औ कद आतकतु का कि मैंने तुझे आजाद कर दिया, फकद आतका तो तहकीक वो गुलाम या बांदी आजाद हो गया, नवा बिहिल इतका औ लम यनवी, चाहे आका आजादी की नीयत करे या न करे, क्योंकि ये अल्फाज सरीह हैं और सरीह में नीयत की जरूरत नहीं क्योंकि इनमें और किसी माना का इहतमाल ही नहीं। कहते हैं लिअन्नहादिहिल अल्फाज सरीहतुन फीही, इसलिए क्योंकि ये वाले अल्फाज जो हैं इताक के अंदर यानी आजाद करने में सरीह हैं, लिअन्नहा मुस्तअमलतुन फीही शरअन व उर्फन, इसलिए क्योंकि ये अल्फाज इताक में इस्तेमाल होते हैं शरअन व उर्फन, शरअन भी और उर्फन भी, आम लोगों की आदत भी यही है कि आजाद करने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ النِّيَّتِ, تو اس نے بے نیاز کر دیا نیت سے. جب یہ الفاظ صریح ہیں تو اس نے نیت سے بے نیاز کر دیا, یہ اسی میں استعمال ہوتے ہیں. وَالْوَضْعُ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَتِ. بھئی یہ جو الفاظ ہیں انت حرن, یہ اصل میں تو وضع ہیں خبر کے لیے, یہ خبر دینے کے لیے, انت حرن تو آزاد ہے, لیکن شریعت نے ان کو انشاء قرار دیا ہے اعتاق کے لیے. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم بیع و شراء کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں, تو ان سب میں دیکھو ایک چیز کو وجود دیا جا رہا ہے. انشاء, انشاء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو وجود دینا. میاں بیوی ایجاب اور قبول کرتے ہیں, ایک شخص عورت سے کہتا ہے میں نے تم سے نکاح کر لیا, اور عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا, اور دو گواہ بھی موجود ہیں, تو دیکھو دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا, ایک نئی چیز کو دونوں نے وجود دے دیا, یہ دونوں اب میاں بیوی بن گئے بھائی. تو اس کو کہتے ہیں انشاء, ایک چیز کو وجود دینا جو پہلے نہیں تھی. یا اسی طرح آپ ایک آدمی کو اپنی کتاب فروخت کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دی, اور وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے, تو یہ کہتے ہی بیع منعقد ہو گئی, یہ کہتے ہی بیع منعقد ہو گئی. پہلے آپ اس کتاب کے مالک تھے, اب مشتری اس کتاب کا مالک بن گیا, کیونکہ بیع پائی گئی, آپ لوگوں نے بیع کو وجود دے دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں انشاء. تو یہ جو انشاء عقد کے لیے ہم صیغے استعمال کرتے ہیں, خاوند نے بیوی سے کیا کہا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا, یہ تو خبر دے رہا ہے, لیکن شریعت نے یہ لفظ جو خبر کے لیے وضع ہیں ان کو انشاء والا درجہ دے دیا. وجہ یہ کہ انسان نکاح کا محتاج ہے, اور انشاء نکاح کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں. تو اگر خبر کو انشاء کے قائم مقام نہ کیا جائے تو پھر تو انسان اپنی حاجت اور ضرورت کیسے پوری کرے گا بھائی. تو لہذا شریعت نے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے خبر کے صیغوں کو ہوئی انشاء والا حکم دے دیا. اسی طرح بیع و شراء کرتے ہیں, آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی, بھئی یہ تو آپ ماضی کے صیغے استعمال کر رہے ہیں, یہ تو خبر دے رہے ہیں آپ, لیکن یہاں پر شریعت نے ان کو انشاء والا حکم دے دیا, کیونکہ انسان بیع و شراء کا محتاج ہے, اس کو کبھی ایک چیز کی حاجت پیش آتی ہے کبھی دوسری چیز کی حاجت پیش آتی ہے, اور وہ اس کا مالک نہیں ہے تو اس کو وہ چیز خریدنی پڑے گی بھائی. تو انسان بیع و شراء کا محتاج ہوا بھائی, اور انشاء بیع کے لیے تو عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے, تو انسان محتاج تھا بیع و شراء کا, اور اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں تھا, تو شریعت نے خبر کے صیغوں کو ہی انشاء والا حکم دے دیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا انت حر تو آزاد ہے, تو یہ تو خبر ہے بھائی, یہ کیا ہے یہ خبر ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی کہ انت رجل شجاع, آپ بڑے بہادر آدمی ہیں, آپ بڑے بہادر آدمی ہیں, تو آپ کے کہنے سے وہ بہادر نہیں بنا, یا آپ اس کو صرف خبر دے رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ شاید تمہیں خود احساس نہ ہو لیکن تم بڑے بہادر آدمی ہو بھائی. تو لہذا یہاں پر بھی انت حر یا حررتک یا اعتقتک, یہ سب خبر والے صیغے ہیں, لیکن شریعت نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ان کو انشاء والا حکم دے دیا. تو کہتے ہیں والوضع ان کان فی الاخبار, اور یہ جو الفاظ ہیں ان کی وضع اگرچہ خبر کے لیے ہے. والوضع, وضع کا معنی مقرر کرنا, والوضع ان کان فی الاخبار, اگرچہ ان الفاظ کی جو وضع ہے وہ خبر میں ہے. فقط جو علا انشا ان فی تصرفات شرعیتی, تو تحقیق ان کو تصرفات شرعیہ کے اندر انشا قرار دیا گیا ہے, للحاجتی حاجت کی وجہ سے. تصرفات شرعیہ جو ہم نکاح وغیرہ کا عقد کرتے ہیں, بیع و شراء کا عقد کرتے ہیں, اجارہ کا عقد کرتے ہیں, تو یہ سب کیا ہیں؟ تصرفات شرعیہ ہیں بھائی. تو یہ تصرفات شرعیہ میں اس کو انشاء قرار دیا گیا ہے للحاجتی حاجت کی وجہ سے. کما فی الطلاق والبیع وغیرہما, جیسے کہ طلاق اور بیع وغیرہ میں ہے. طلاق کے لیے بھی انسان کو طلاق کی حاجت ہے, تو خبر کے صیغوں کو ہی انشاء کا قائم مقام کر دیا. اسی طرح بیع میں بھی. ولو قال عنیت به الاخبار الباطل او انه حر من العمل صدق دیانتا. صورت مسئلہ یہ, آقا نے اپنے غلام سے کہا انت حر, या अंता मुअतकुन या कोई भी लफ्ज कहा जो ऊपर जिक्र है, ये लफ्ज आका ने कहे और फिर बाद में कहता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैंने वैसे एक झूठी खबर दी थी, ये तो मेरा गुलाम है, मैंने वैसे ही झूठी खबर दी थी पास बैठे हुए लोगों को। तो कहते हैं इस सूरत में दयानतन आका की तस्दीक की जाएगी, कजाअन नहीं, दयानतन आका की तस्दीक की जाएगी, इसलिए क्योंकि ये जो इसने अल्फाज कहे इनमें झूठ का भी एहतमाल है भाई। या दूसरी सूरत आका कहता है कि मैंने इसको आजाद करने का इरादा नहीं किया था, मेरा मतलब यह था ये काम काज से आजाद है, मैंने इसको कहा था अंता हुर्रुन तू आजाद है, यानी काम काज से आजाद है, आज से तुम्हें काम काज करने की जरूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं इस सूरत में दयानतन तो आका की तस्दीक की जाएगी, इसलिए क्योंकि उसके कलाम में इस माना का इहतमाल है, लेकिन कजाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी क्योंकि उसका कलाम खिलाफ जाहिर है। जाहिर यही है कि इन लफ्जों के जरिए गुलाम को आजाद किया जाता है भाई। तो कहते हैं वलौ काला, और अगर आका ने कहा आनई तू बिहिल इखबार अल बातिला के इरादा किया था मैंने इसके जरिए बातिल खबर का यानी झूठी खबर का, औ अन्नहु हुर्रुम मिनल अमलिया ये इरादा मैंने किया था कि वो काम काज से आजाद है, सुद्दिका दयानतन तो इस आका की दयानतन तस्दीक की जाएगी, ये उसके और अल्लाह का मामला है, ले अन्नहु यहतमिलुहु इसलिए क्योंकि इसके अल्फाज इसका इहतमाल रखते हैं, वला युदय्यनु कजाअन लेकिन कजाअन उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, ले अन्नहु खिलाफु जाहिरी इसलिए क्योंकि यह जाहिर के खिलाफ है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।